नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाली विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च तक शुरू की गई है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच मल्लनपुरम नई चंडीगढ़ में महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।